تفسير دیکھیں گے آیت 23 سے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. اور ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف, تو آپ نے فرمایا کہ میری قوم, اللہ کی عبادت کرو, نہیں ہے کوئی تمہارا الہ اس کے سوا, کیا تم بت پرستی کے انجام سے نہیں ڈرتے؟ یہاں سے سبق کا آغاز ہے. پچھلے سبق میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ان کی تخلیق اور کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے ذریعے سے نصیحت کی. سورت کے شروع میں ہی مومنوں کی صفات تھیں. اب یہاں سے نہ ماننے والوں کا انجام بتایا جا رہا ہے اور ان کے رویے بتائے جا رہے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک جو آیتیں تھیں اس میں تذکیر بھی اعلیٰ اللہ ہی, اللہ اپنی نعمتوں کے ذریعے سے تذکیر کرتا ہے, اور اب یہاں سے آگے تذکیر بھی ایام اللہ, بڑے بڑے دن جن میں عذاب آئے, جس پہ قومیں ڈبائی گئیں, ہلاک کی گئیں. بتایا جا رہا ہے کہ کب اللہ کی چنی ہوئی قومیں, جب وہ قومیں جن کی طرف نبیوں کو بھیجا جاتا ہے, جو خوش قسمت ہوتی ہیں اس لحاظ سے, جب وہ نعمتوں کی قدر نہیں کرتی تو اللہ تعالیٰ ان سے نعمتوں کو چھین لیتا ہے. آج بھی آپ دیکھیے تو یہی دو طریقہ تعلیم ہے, یا انسان ڈر سے سیکھتا ہے یا پیار سے سیکھتا ہے. کچھ بچے ہوتے ہیں جو غصہ مانتے ہیں, جب تک آپ آنکھیں نہ دکھائیں ڈانٹے نہ, ان کو سمجھ ہی نہیں آتی بات. آپ کہہ لیں کہ وہ ترغیب ہے راہب سے. کچھ بچے پیار مانتے ہیں, پیار سے بات کریں تو سمجھتے ہیں وہ ترغیب ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں ہی چیزیں قرآن پاک میں رکھ دی. ہم سب کے لیے ان آیات کو سنتے وقت محاسبے کا میدان کھلا ہوا ہے. اگر ابھی تک کی جو آیات تھی اس سے ہمارے اندر کوئی رغبت پیدا نہیں ہوئی, تو آپ کہہ لیں کہ اللہ نے جو جمال پیش کیا اس سے بھی ہم اللہ تک نہ پہنچے, اور اب اللہ کا جلال دیکھ کر بھی اگر ہمارے دل میں رہب نہیں آتا تو پھر ہم انسان نہیں, پتھر ہیں. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک, کیونکہ جو نہ ڈر مانے نہ پیار مانے پھر وہ پتھر ہی ہوتا ہے. اشارہ سمجھتے ہیں عقل مند لوگ, لیکن منہ سے بات کی جائے, بار بار کی جائے, لوگ وہ بھی نہیں سمجھتے. تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کو کیسے پیش کرتے ہیں. جو اگلے سبق آئیں گے ان سب کے لیے ایک چیز ذہن میں شروع سے رکھ لیں کہ حق کی طرف بلانے والوں کا طریقہ بھی شروع سے آج تک ایک ہی رہا ہے. انبیاء کرام کی صورت میں ہم دیکھتے ہیں کیسے وہ درد مندی کا پیکر ہوتے ہیں, خیر خواہ ہوتے ہیں, بے غرض ہوتے ہیں, ذاتی مفادات کی ان کو پرواہ نہیں ہوتی, اور اسی طرح کی کچھ اور باتیں, اور ان کی دعوت بھی ایک ہی ہے. اور اسی طرح سے وہ لوگ جو حق کو جھٹلاتے ہیں نا, ان کے بھی طریقے ہمیشہ سے ایک جیسے رہے. ہم یہاں کچھ ان کے الفاظ کے ذریعے سے دیکھیں گے کہ جرت کیسے ہوتی ہے لوگوں کو حق کے مقابلے میں اپنی زبانوں کو کھولنے کی. اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں ادھر, پیچھے ہم کئی بار ان کا تذکرہ سن چکے کہ پہلے صاحب شریعت نبی تھے. حضرت آدم اور نوح کے بیچ میں 10 قرن گزرے صحیح روایت کی روشنی میں. اس دوران کچھ لوگ جو مرتے گئے, شیطان نے ان کے بت بنوا کر آہستہ آہستہ لوگوں میں عام کر دیے تاکہ ان کی برکت سے تم بھی اللہ کے عذابوں سے بچے رہو. یہ تو نہیں کسی کو سکھایا کہ تم بھی وہ نیکیاں کرو جو یہ کرتے تھے, یہ سکھا دیا کہ تم ان کے اسٹیچوز, ان کی تصویریں, ان کے بت, ان کی شبیہیں رکھتے جاؤ تاکہ پھر تم بھی اللہ کی پکڑ سے بچتے جاؤ. اور آہستہ آہستہ پھر شرک اور اس طرح کے کام جو تھے وہ ہوتے گئے, اور قوم جو تھی شرک کا شکار ہو گئی. پنج تن پاک انہوں نے بنائے ہوئے تھے اپنے, لات, منات, یوک, یغوس اور نصر, سورت نوح میں ہم پڑھیں گے. اور حضرت نوح کا قصہ پڑھتے ہوئے اکثر ہی آپ کو یاد دلاتی ہوں کہ سورت نوح کو بھی آپ اگر ٹچ کر کے دیکھیں, اور انشاءاللہ وقت آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلایا, اور ایک ہی دعوت تھی, کیا, اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. یہ ہے پہلا بنیادی نقطہ جو کسی بھی دائی کی دعوت میں ہونا چاہیے, اور وہ کیا ہے, اللہ کی طرف بلائے, اللہ کی بڑائی بیان کرے. گروہوں، جماعتوں، مسلکوں، اداروں کی طرف بلانے کی بجائے اللہ کی طرف بلاؤ۔ بندگی اللہ کی، انسانوں کی نہیں، اللہ کے بندے بنو، اللہ سے جڑو۔ جو تعلیم لیتے اس کے بعد چیک کرو اپنے آپ کو کہ تم اللہ سے جڑ رہے ہو کہ گروہوں سے جڑ رہے ہو کہ مسلکوں سے جڑ رہے ہو۔ تمہیں اپنی ٹھنڈی قبر یاد آتی ہے جس میں تم نے ہیٹ کا انتظام کرنا ہے، یا تمہیں دنیا کے عیش اور آرام ہی سب کچھ لگتے ہیں؟ اور حقیقی دعوت ہوتی وہ ہے کہ جو بندے کو اس زمین کی نسبتوں سے اٹھا کر آسمان کی طرف جوڑ دے۔ اور دوسرا بنیادی نقطہ، افلا تتقون، تقویٰ نہیں ہے تم میں؟ ابھی بھی تمہیں نہیں یہ احساس ہو رہا کہ اللہ تمہیں دیکھتا ہے، اللہ کی طرف جانا ہے؟ جواب دو گے، یہ جو زندگیاں گزار رہے ہو آخر اس کا انجام کیا ہے؟ کتنی سیدھی سادھی دعوت ہے حضرت نوح کی، کوئی اچھی بچھی نہیں، کوئی ادھر کی کوئی ادھر کی نہیں۔ ہاں کر لو اللہ کو بڑا، لیکن ساتھ دوسروں کو بھی کر لو، چلو کوئی نہیں، اللہ تو غفور الرحیم ہے، ایسی کوئی جھول والی بات نہیں ہوتی۔ اور یاد رکھے کہ جس شخص کی بات میں وزن ہوتا ہے اس کے انداز میں بھی ایک اعتماد ہوتا ہے، وہ ڈھیلی ڈھالی باتیں نہیں کرتا، ہاں یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک، ہاں میرا خیال ہے، کر لیں، چلیں پوچھتے ہیں، دیکھتے ہیں، کسی سے پوچھ کے آپ کو بتاتے ہیں۔ کیونکہ بتانے والے کی بات کا جو یقین ہوتا ہے نا، وہ سننے والوں کے عمل میں ڈھلتا ہے۔ جو باتیں ڈھیلی ڈھیلی کی جاتی ہیں نا، وہ ڈھیلی ہوتی ہیں۔ مثلا آپ دیکھیے کہ کوئی آپ سے کہے کہ جانا ہے ادھر، ایک بندہ وہ کہتا ہے ہاں بالکل جانا ہے، اور دوسرا کہتا ہے چلیں دیکھتے ہیں، کیا خیال ہے، کر لیتے ہیں، جیسا ہوگا کر لیں گے۔ انتہائی مبغوث جملے ہیں یہ، ہمارے اندر ابھی اس چیز کا یقین نہیں آیا جس کو ظاہر کرتے ہیں۔ آپ پڑھیں پرسنالٹی گرومنگ میں، ڈیولپ پرسنالٹی، کریکٹر بلڈنگ کو، یہ جملے اکھیڑ کے پھینک دینے چاہیے اپنی زندگی سے۔ چاہے آپ نے یہی سوچنا ہے کہ آج کیا پکے گا، کہاں جائیں گے۔ بندہ مومن کا کام بالکل دو ٹوک ہوتا ہے، وہ لٹکا نہیں دیتا چیزوں کو، ہاں دیکھتے ہیں، چلیں ہو جائے گا، کہہ دی تو ہو گئی، پتھر پہ لکیر ہے، ایک اصول بن گیا تو بن گیا، رول ہے تو بن گیا۔ وہ ہر دوسرے دن اس کے اوپر خود ہی قلم نہیں پھیر رہا ہوتا کہ اچھا چلو ایسا نہیں ویسا۔ تو نبیوں کی دعوت میں آپ کو اعتماد جھلکے گا، اور یہ اعتماد آتا کہاں سے ہے؟ اللہ کی بندگی سے آتا ہے۔ بندے کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، میری تو یہ اوقات ہے کہ ہینڈز فری ہوں، کچھ نہیں، ایک پھوٹی کوڑی نہیں میرے ہاتھ میں، لیکن یہ پتہ ہے کہ ایاک نستعین، تجھ سے مدد مانگ کے میں بہت مضبوط ہو جاتا ہوں۔ اور یہ جرات لوگوں کو اچھی نہیں لگتی، یاد رکھے، ہر سوسائٹی میں جب بھی کسی حق والے نے یہ بات کی، تو اب امیجن کریں کہ سارے ہی لوگ، دنیا کے بندے، مال کے بندے، رسم و رواج کے بندے اور سٹیٹس کے بندے بنے ہوئے تھے، اتنے میں کوئی آیا اور کہتے ہیں ان سارے بتوں کو توڑو، ایک رب کے بن جاؤ، تو وہی شور اٹھتا ہے جو مکہ میں اٹھا تھا۔ اور اسی شور کی کچھ آوازیں اگلی آیتوں میں دکھتی ہیں۔ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، نوح نے تو دعوت سب کو دی تھی، یہ نہیں تھی کہ امیروں کے طبقے میں یا ان لیڈس یا پروفیشنلز یا ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگوں میں یا گورنمنٹ کے لیول پہ جو افسران تھے ان کے پاس گئے، لیکن باقی تو چپ کر رہے۔ لیکن بڑے بولے، وہ سردار جنہوں نے کفر کیا تھا ان تعلیمات کا، اللہ کا، نوح کا کفر کیا تھا، کیا کہنے لگے؟ اور تھے انہی کے قوم میں سے، اپنی قوم کے لوگوں میں سے کچھ کفر اختیار کرنے والے، بولے یہ نہیں ہے بشر مگر تمہارے ہی جیسا۔ لو دیکھیے، بڑا بن گیا، اپنے تمہارے جیسا انسان ہے اور باتیں بڑی بڑی کرتا ہے۔ یرید ان یتفضل، یہ چاہتا ہے کہ اپنی بزرگی جتلائے، بڑا بنے، علیکم، تم پر، یعنی اس کو بڑا شوق ہے بڑا بننے کا۔ آپ دیکھیے کہ نبی کی دعوت عام ہوتی ہے، حق والا کبھی کلاسیفیکیشن نہیں کرتا، کلاس سسٹم اسلام میں پسندیدہ ہی نہیں ہے کہ یہ اپر کلاس کے لوگ ہیں، یہ مڈل کلاس کے لوگ ہیں، یہ لوور کلاس کے لوگ ہیں۔ ہمارے ہاں ہر جگہ یہ تین کیٹیگریز آتی ہیں، پے میں بھی آتے ہیں، یہ فلاں گریڈ ہے، یہ 17واں گریڈ ہے، یہ 18واں ہے، یہ 12 ہے، یہ 14، جہاز میں جائیں گے اپر کلاس، لوور کلاس، سیکنڈ کلاس، ٹھیک ہے، دنیا کے لگژری کے لیے ہوتا ہے جو کرتا ہے کرے، لیکن انسانوں کو جانچنے اور پرکھنے کے طور پر کبھی بھی اسلام گروہ بندی اور جماعت بندی کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جس معاشرے میں چند لوگ خود کو بڑا بنائے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری عبادت کرو، ہماری بندگی کرو، ہمارے آگے جھکو، ہمیں پوچھو، ہم بڑے ہیں، ہمیں دیکھو، ہم تمہارے مقدر کے فیصلے کرتے ہیں، تمہاری پالیسیز ہم سے منظور ہوں گی، تمہارے لیے کیا چیز لازم ہے کیا نہیں یہ ہم بتائیں گے، قانون سب یہاں سے بن کے آئیں گے، ہم پاس کریں گے، ہماری سٹیمپ لگے گی تو تم وہ کام کرو گے۔ اب ایسے لوگوں کو جب پتہ چلتا ہے کہ ایک بندہ لوگوں کو ایسی سچی تعلیم دینے لگ گیا جس کے بعد لوگوں کے دل سے بڑوں کی بڑائی تو نکل گئی، جب بڑائی نکلی تو وہ بڑے بھی بڑے نہ رہے، وہ کہتے ہیں پکڑ لو اس کو، منہ بند کرو ان کا، روکو ان کو۔ کل بھی یہی تھا، آج بھی یہی ہے، ہر دور میں جب لوگوں کو ایک رب کی طرف بلایا جائے تو سب سے زیادہ بے چین وہ لوگ ہوتے ہیں جو معاشرے میں بڑے بنے ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو دنیا کے اندر منوایا ہوتا ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس عموماً پیسہ بہت ہوتا ہے۔ دوسری بات ہے ان کے پاس اتھارٹی بہت ہوتی ہے، اختیارات، یعنی آپ کہہ لیں کہ حب جاہ اور حب مال، دونوں کے رسیا۔ اب یہ لوگ جو ہوتے ہیں، چونکہ مال کی کثرت ہے پہلی بات، پھر دوسری بات ہے کہ بہت معروف ہو گئے شہر میں، اب ان کے پاس ایک تو وقت بہت ہوتا ہے کیونکہ کوئی مقصد تو ہے نہیں زندگی کا، پھر یہ کرتے کیا، آج وہاں محفل موسیقی، آج وہاں شام غزل، آج وہاں رنگ رونق کی محفل، آج وہاں عرس ہوگا، آج میلہ ہوگا، ایسے ہی شو کے نام پہ کہ چلو دین کا نام آئے تو عرس کروا لیں گے، قوالیوں کی محفل رکھ لیں گے، اور دنیا کا موقع آئے گا، کوئی دنیا کا پروگرام ہے تو اس میں کوئی کنسرٹ رکھ لیں گے، اور ساتھ ہی موقع ملا خوب پیسے کا ایکسپوجر، اچھے کپڑے، اچھی باتیں، اور بڑے بن کے اسٹیج سجیں گے، جیسے شادی کے اسٹیج پہ لوگ بیٹھتے ہیں اس طرح دینی محفلوں کے اسٹیج پہ بیٹھیں گے، اب ان کو بڑا مزہ آتا ہے، اور یہ چیزیں ان کو بڑی کھولتی ہیں جو بیچارے غریب غربا ہوتے ہیں، ان کے پاس تو ہوتا ہی کچھ نہیں کہ وہ کسی ایک جگہ کا ٹکٹ لے کے بھی جا کے وہاں تھوڑا سا وقت گزاریں۔ اب ہوتا کیا کہ جب ایسی دعوت آتی ہے تو یہ لوگ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ او یہ تو ہاتھ سے نکل جائیں گے، کل تک ہمیں بڑا بنا رہے تھے، آج تو یہ بڑا نہیں مانیں گے ہمیں، چلو پکڑو ان کا راستہ روکو۔ اور راستہ روکنے کا سب سے پہلا سٹیپ ہر دور میں کیا ہوا، رسول کی کردار کشی۔ کل لوگ رسولوں کی کردار کشی کرتے تھے، ان کے خلاف پروپیگنڈے کرتے تھے، آج دین حق کے بارے میں پہلا جملہ کہ ما ھذا الا بشر مثلکم، یا نمبر ون لگا لیجئے، اے لگا لیں، کہ یہ پہلا جملہ جو لوگوں کو مشکوک کرنے کے لیے ہر دور میں بولا جاتا ہے، کیا ہے ہمارے جیسا تو انسان ہے، نبی کا بشر ہونا کھولتا ہے۔ دوسرا الزام، یرید ان یتفضل علیکم، یہ تم پہ بڑا بننا چاہتا ہے، ان کو بڑا لیڈر بننے کا شوق ہے، اصل بات یہ ہے کہ یہ بڑے بن کے ساری اتھارٹی، سارا اختیار اپنے حق میں لینا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ذرا ہم ان کے مذہبی لیڈر بن جائیں، لوگ ہم سے فتوے لیں، لوگ آئیں ہمارے ہاتھ گرم کریں، یہ دوسرا الزام تھا نبیوں پہ۔ تیسرا، یہاں تک آپ دیکھیں کہ براہ راست نبی پر اٹیک کیا جا رہا ہے، تیسرا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، یہ ایک طرح جملہ ہے، کہتے ہیں اگر اللہ نے رسول بھیجنا تھا تو کسی فرشتے کو اتارتا، یہ کس بات کو مزید کنفرم کر رہے ہیں، مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کہ اللہ نے بشر کیوں بھیجنا تھا، اللہ چاہتا تو کوئی رسول بھیجتا، تو فرشتے کی صورت میں بھیجتا۔ اب یہ جو بات ہے نا کہ بشر مثلکم، اس میں پھر دو باتیں ہیں، ایک تو یہ تھا کہ رسول بشر کیوں ہے، نمبر ایک فرشتہ ہوتا پتہ چلتا کہ یہ جی ہم سے ذرا آل ہے، دوسرا ایک اور مفہوم بھی ہے مثلکم کا، اور وہ کیا کہ بشر تو چلو تھا، ہے بھی تمہارے ہی جیسا، مثلا کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، شادیاں بھی کرتا ہے، آگے بھی ہم اس کو پڑھیں گے، اگلے نبیوں کے قصے میں بھی آئے گی یہ بات، کہ ہر دور میں لوگوں کو یہ بات بڑی کھولتی ہے کہ دین کی طرف بلانے والے ہماری طرح کھاتے، ہماری طرح پیتے، پہنتے، اوڑھتے، شادیاں کرتے، گھر بناتے، یہ کیسے انسان ہے، ان کو کیا ہو گیا، ان کا کیا معاملہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی اس بات کو بنیاد نہیں بنا رہے، یہاں صرف ان کی باتوں کو کوٹ کرتے ہیں۔ چوتھا جملہ دیکھیے گا جو ان لوگوں نے اللہ کے نبیوں کے خلاف، یہاں حضرت نوح کے خلاف بولا، ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، ہم نے تو یہ بات اپنے باپ دادا میں کبھی سنی نہیں تھی، یہ ہے ایک اور الزام، نئی باتیں کرتے ہیں، اتنے سال سے ہم مسلمان تھے ہم نے تو یہ باتیں کبھی نہیں سنی، یہ تو ایسے ہیں، یہ تو ویسے ہیں، یہ تو کیا کرتے ہوں گے، اور یہ دیکھو نئی باتیں لے کے آگے، کیا بھلا مسلمان نہیں تھے، خیر سے جدی پوچھتی تھے، ہم نے نہیں یہ باتیں سنی، پتہ نہیں یہ کہاں سے آ گئی۔ باپ دادا کا نام لے کر جذباتیت کو بھرتے ہیں لوگ، याद रखें कि अपने दौर के बुजुर्गों को लोग शायद सलाम भी ना करें, कई कई दिन शक्ल ना दिखाएं, नौकरों के हाथ खाना भेज दें, खुद बात भी ना करें। लेकिन जूं ही वो बुजुर्ग फौत होते हैं ना, तो औरतें कहती हैं मेरी सास मरहुमा, अल्लाह उनको माफ़ करे। और जब जिंदगी में होती हैं वो सास, तो उनको कहती हैं अल्लाह पूछेगा इनको। फर्क है ना, जो दुनिया से चला जाता है ना लोग उसको हीरो बना लेते हैं, और जो दुनिया में सामने होता है उसको लोग रोल मॉडल भी नहीं बनाना चाहते। अल्लाह के नबियों के बारे में ये बात कर देनी कि ये तो भाई बाप दादा की बातें को गलत कहते हैं, आप देखिए कि ये बहुत बड़ा बुत है। मैं तो सोचती थी कि आज के दौर में ये बुत टूट चुके हैं, क्योंकि शऊर का दौर है, दलील का दौर है, पढ़े लिखे लोग अब दीन की तरफ आ रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि ये बुत आज भी उतने का उतना ही मजबूत है जितना आज से शायद 100 साल पहले था, या 1400 साल पहले था, या उससे कई सौ साल पहले था। आप देखिए कि बाप दादा का नाम लेकर लोग नेकी से रुकते ज़रूर हैं, नेकियां करते नहीं हैं। दुनिया की तरक्की नहीं छोड़ते, लेकिन दीन की तरक्की छोड़ देते हैं। बस आप देखिए कि आप में से किसी के फोर फादर्स में से हो सकता है किसी को कैंसर हुआ हो, मर गए बेचारे। क्यों? कैंसर का इलाज नहीं था, दवा नहीं थी, दारू नहीं था, बेचारे एड़ियाँ रगड़ के मर गए। अब उसी ख़ानदान में फिर किसी को, अल्लाह ना करे, ये तकलीफ़ हो जाए। कभी किसी को आपने सुना कि नहीं, तौबा करो, माफ़ी मांगो, कानों का हाथ लगाओ? हमने नहीं कैंसर की दवाई खानी, क्यों? इसलिए कि वो दादा मरहूम ने नहीं खाई थी ना, तो जब वो नहीं खाते थे तो हम क्यों खाएं? कभी सुना आपने? कभी किसी को आपने सुना मैं तो भाई एयर कंडीशनर कभी नहीं अपने घर में लगाऊंगा क्योंकि मेरी अम्मी के नाना के घर में नहीं था, तो बस अस्तग़फ़ार, मैं क्यों लगाऊं? कभी कोई जहाज़ में बैठने से इनकार करता है ये कह कर के मेरे तो नाना दादा में कोई बैठा ही ना था? कभी किसी ने इंग्लिश बोलने से इनकार किया कि नहीं मेरी तो परनानी और उनके नाना और फुला, वो उन्होंने तो कभी इंग्लिश का नाम नहीं सुना था, मैं क्यों बोलूँ? और इसके बरक्स जो दीन की बात आती कहती क्या करें फिर बाप दादा। कभी किसी ने ये कहा भी मैं तो KFC का बर्गर नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरे बड़ों ने कभी नहीं खाया था, मैं तो मैकडोनल्ड के अंदर भी नहीं जाऊंगा, और मैं तो कहीं पिज़्ज़ा हट में जाऊंगा नहीं, और मैं तो हर वक्त इंटरनेट पे चैटिंग करूंगा ही नहीं, मैं नहीं करती क्योंकि मेरी अम्मा ने कभी नहीं की थी। आज देखिए कि जब आप बच्चों को भी दीन की कोई बात कहने लगते हैं ना, तो बच्चे आगे से कहते हैं हाँ खुद तो आपने सब कुछ कर लिया, खुद तो आप गाने भी सुनती थी, आप तो पर्दा भी नहीं करती थी, मूवीज़ भी देखती थी, हमें रोक लिया। बस ये बात सुन के ना माओं के हाथ ठंडे होते हैं, पसीने पसीने। हाँ वाकई शर्मिंदगी, क्यों दिखाई थी इनको अपनी शादी की तस्वीरें, क्यों रखी थी मूवी अपनी कि ये आज हमें बातें करें? हालांकि आपको क्या करना चाहिए, बिल्कुल शर्मिंदा ना हो, आप फ़ौरन उनको कह के हाँ मैं तुम्हारी तरह इतनी देर भी कंप्यूटर पर नहीं बैठती थी, इस वक्त में तुम भी बंद करो, मैं तो इस तरह खुलेआम नहीं फिरती थी, बट ठीक है तुम भी ना फिरो। यानी डिफेंसिव जब हम हो जाते हैं ना तो लोग आपको दबाएंगे, हमेशा ऑफेंसिव हो, दिफा ना करें, अपना इकदाम करें, ऊपर बढ़ें, हमेशा बच्चों से एक हाथ ऊपर है। कल तक तो सोशल प्रेशर था, पीयर प्रेशर था, आज के दौर में चाइल्ड प्रेशर है। जितना आज बच्चों से लोग दबते हैं उतना शायद किसी और से नहीं दबते। बाकी रह गए बाप दादा, अगर उनसे कोई कमी कोताही हो गई और नेकियां कीजिए। नानी को नहीं पता था, वो हो सकता है कोई शिर्क करती थी, कोई नजर न्याज देती थी, कोई किसी इमाम के नाम पे उन्होंने, हो सकता है उनको नहीं पता था, तो आप तो और नेकियां कीजिए कि अल्लाह मेरी माँ तो पता नहीं क्या चढ़ावे चढ़ाती दुनिया से चली गई, मैंने तो उसको कब्रों पे भी जाते देखा, मैंने तो उसको कई खाने पका पका के गैरों के नाम पे बांटते देखा, तो अल्लाह प्लीज़ उनको भी माफ़ कर और मुझे भी माफ़ कर, मैं और नेकियां करूँ ताकि मेरी माँ के भी गुनाह माफ़ हो जाएं, ये सोच होनी चाहिए। कभी किसी की दादी या परदादी के वक्त में सालगिरहें हुई थी, केक कटे थे, तो आज क्यों कटते हैं? फिर क्यों नहीं कहते कि माँ समय न बिहाज़ फ़िया आबाई न लवलिन? नफ्स की सारी ख्वाहिशात पूरी और दीन के नाम पे हम बिल्कुल पीछे होने लगते हैं, तो ये बात आज भी है। अब आज जब आप सच्चा दीन, और सच्चा दीन तो मैं कहती हूँ अल्लाह का कलाम है, जिसके अंदर कोई गलत बात कहेगा भी तो दुनिया में भी उस पर फटकार पड़ेगी और आखिरत में तो पढ़नी की पढ़नी है, जब इसकी कोई बात आप लोगों के सामने करें और वो कहते हैं ना कि जी हमने तो ये बात कभी नहीं सुनी, तो आप ज़रा उनको जवाब दिया करें। आपने कभी वैसे ये जुमला सुना है लोगों से, कोई बात आप कहें ना दीन की, जब आप पढ़ते हैं आप कुरान में, और कोई बंदा आपसे कहे कि हमने तो ये बात कभी नहीं सुनी, कहते हैं लोग ये बात? देखिए कि जब भी हम दीन की कोई बात करते हैं ना, तो लोग दो एंगल से बात करते हैं। एक बात होती है कि हम दीन नहीं जानते थे, अब दीन पता चल गया, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो हर बंदा डिक्लेयर करता है भाई कल तक किताब नहीं पढ़ी थी, अब पढ़ ली। मसला क्या है कि जब दीनदार लोग या दीन से ताल्लुक रखने वाले लोग ये कहते हैं जी हमने तो दीन के नाम पे ये बातें नहीं सुनी, तुमने कहाँ सुनी, उसका जवाब आप क्या दें? क्योंकि अमूमन एतराज़ बेदीन नहीं करते, वो तो और सर नीचे करके, अभी उनको पता है कि हमें तो और जॉब भी करनी है, अभी तो हमें और काम है, ये कहीं हमें दावत ही ना दे दें कुरान की, वो तो बेचारे आपसे जान छुड़ाते हैं, वो तो आपसे लंबी बात ही नहीं करते कि कहीं आप फिर ना उनको कुछ कहें। असल मसला उनका होता है जो पहले से या तो कोई बातें दीन की सुन सुना रहे होते हैं या उनका किसी भी तरह से दीन से ताल्लुक होता है। क्योंकि आप देखिए कि दीन के कुछ बेसिक्स तो शुरू से हम सुनते आए ना, क्या हमारी रिवायतों में नहीं है? माँ बाप खुद जैसे मर्जी थे उठते बैठते बच्चों को ये कहते थे नमाज पढ़ो, कहते थे 6 7 8 साल की लड़की होनी शुरू होती थी दुपट्टा लो कपड़े ठीक करो, कहते थे कि नहीं,
जी
ये तो हमारी रिवायतें हैं। गाने सुनने पे लोग बुरा बनाते थे, गाना बजाना बिल्कुल कहते थे। अब तो चले और ही कई तरीके ना, पहले दौर में तो जो भी ऐसी कैफियत होती थी कई शादियों पे बदमजगी हो जाती थी, कोई गाने वाला आके बैठा हुआ है, कोई भांड है, कोई कोई है, तो घर के बुजुर्ग ने आके सबके सामने उसको निकाल दिया कि चलो भाग जाओ इधर ना आना। खुसरे आते थे घरों में, बच्चा पैदा होता था आके गाने बजाने लग जाते थे, तो घर के बुजुर्ग ने आके सबके सामने उसको निकाल दिया। ये चीजें तो हमारे दीन में शुरू से है, कोई ढकी छुपी बात नहीं। सूद मेरा हाल है, पहले उनको पता ही नहीं था होता क्या है, इतने सीधे साधे उनके मामलात थे, आज बच्चे बच्चे को उसकी कहानी पता है। अब आप देखिए कि जब कोई बंदा आपसे ये कहे ना कि मैंने तो कभी नहीं ये बात पहले सुनी, तो आप उससे जवाब में पूछें, मैं छोटी सी बातें आपसे पूछूं जी, ये बताएं कि कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं, आप कुरान की कितनी सूरतें जानती हैं? फिर आप उनसे पूछें क्या आप सही बुखारी पढ़ चुकी हैं, सही मुस्लिम पढ़ चुकी हैं, सिर सित्ता आपको आती है? फिर वो आप देखिए यूं देखेंगे नीचे, अल्लाह के बंदो ना आपने कुरान समझ के पढ़ा, ना आपको कोई हदीस सही टेक्स्ट से आती, तो आपने कहाँ सुनना था? कहावतें रिवायतें फजाइल बातें, लोगों के अमल आप देखेंगे। मिसाल है कि कोई नॉर्वेजियन लैंग्वेज के बारे में बात होती है और मुझसे कोई पूछता है, तो मैं तो कह दूंगी कि मैंने तो कभी पढ़ी नहीं, मुझे नहीं पता कि नॉर्वेजियन में इस चीज़ को क्या कहते हैं और वो क्या है, सिंपल सी बात है ना। जो मैंने नहीं पढ़ी तो मैं आपको क्यों टोकूं कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं वैसे क्यों बोल रहे हैं, लेकिन हाँ मैं पढ़ चुकी हूँ, मैं उसको सारी जान गई। फिर कोई आप बात करें तो मैं कह सकती हूँ भाई मैंने तो पढ़ी है 10 साल तक, मुझे तो ये बात नहीं मिली जो आप कह रहे हैं। तो जब अनपढ़ झगड़ते हैं ना और वो बहस मुबासा करते हैं, तो समझ जाएं कि ये असल में हक और बातिल की जंग है, कि मा समय नबी हाजफी आबा इन अव्वलीन, आप सब भी रिस्क पे हैं, मैं बार बार आपको कहती हूँ, किसी लम्हे आपको कोई रोक लेगा इस क्लास में आने से, सिर्फ ये कहकर कि ये कौन सा दीन लेने आ गई, अब मसले उठ रहे हैं घरों में, चुप करके बैठो, पता लग गया ना नमाज रोज़ा करो बैठ के घर में, यही करने के काम है, हम कौन सा पहले पढ़ते थे जो पढ़ने जाएं, सारी ज़िंदगी जो कुरान घर बैठ के पढ़ा, अब क्यों जा जा के पढ़ती हो, बस हो गया बहुत, अब और क्या तुमने करना है? खौफ ये पैदा होने लगता है कि कहीं वो चीज़ें हमारे आगे ना चल पड़े, कोई अब ये हमारे आगे बोलने ना लग जाए। आज भी लोग यही कहते हैं, ये बातें तो हमारे ख़ानदान में कभी हुई नहीं थी, कोई कहता है हमारे ख़ानदान में तो कोई ये काम करता ही नहीं था, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये इनकी बातें थी। अगला इल्ज़ाम चौथा या पांचवा, इन हुवा इल्ला रजुलुम बिही जिन्नतुन, नहीं है ये शख्स मगर वो जिसे जुनून का मर्ज़ हो गया, नऊज़ु बिल्ला। ये अगला इल्ज़ाम लगा अल्लाह के नबी पर और हर दौर में लगता है, और वो क्या है कि नऊज़ु बिल्ला ये तो मजनू है। देखिए लफ्ज़ बदले हैं सिर्फ, कल मजनू था आज फनेटिक है, कल उसको जिन्ना कहते थे आज उसको क्रेजी कहते हैं, उसको फंडामेंटलिस्टिक कहते हैं, कहते थे इसको कुछ मर्ज हो गया, आज भी लोग नहीं कहते बस इनको तो अब जादू ही हो गया, इनको और कोई काम ही नहीं, जिधर कोई बुलाता है चल ही पड़ते हैं, ये इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए, ये ब्रेन वॉशिंग हो गई, वाकई ब्रेन वॉश हो गया भाई, शुक्र अल्लाह का, पहले तो बहुत गंदा था, कितनी गंदगी भरी हुई थी हमारे ब्रेन्स में, और अब अल्लाह ताला ने कितनी खैर कर दी हमारे ऊपर। और आप देखें कि हर इल्ज़ाम जो लग रहा है ना ये बहुत प्लान्ड है, सोच सोच के लग रहा है, पहले एक बात किसी को, फिर पहले बेवकूफ़ कहते हैं, फिर उसको क्रेज़ी कहते हैं, कभी अल्लाह के नबी को शायर कहते थे, क्या पता चला कि काफिर जो होते हैं ना नॉन मुस्लिम्स, वो इस्लाम के ख़िलाफ़ जब बातें उठाते हैं ना तो बड़ी प्लानिंग से उठाते हैं। आपको पता है कि अल्लाह के नबी पे इल्ज़ाम का जो दौर है ये कई सालों में पूरा हुआ है, आज से 3 4 साल पहले अल्लाह के नबी की शादियों को बहुत बेस बनाया जाता था, पिछले 1 1.5 साल के अंदर अल्लाह के नबी की जंगों और आपकी वॉर टैक्टिक्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। एक ऐसा दौर था सिर्फ हज़रत आयशा को इशू बना के छोटी उम्र की लड़की से शादी को इशू बनाए, ये बहुत बड़ी प्लानिंग्स हैं। और वो जब इतने प्लान्ड होके प्लानिंग के साथ आपके ऊपर हमले करते हैं, तो हम मुसलमान कैसे अल्लाह तवक्कुल के नाम पे कहें जो भी कर लो कुछ नहीं होगा? नहीं, सोच के तरीके से कहाँ क्या बात करनी है, किसको बात करनी है, किस बात का क्या असर होगा, ये हर चीज़ है। इन बड़ों को ये खौफ होता है कि कल अब हमारे हाथ से लोग निकल गए, फिर हमारी बंदगी कौन करेगा, हम कैसे लोगों की बात सुनेंगे। अल्लाह ताला कह रहे हैं, ये किसको कह रहे हैं? नूह को कह रहे हैं, जिसने 950 साल तक अल्लाह के दीन की खिदमत की, जिसकी दावत का एक ही खुलासा था कि लोगों अल्लाह की तरफ आ जाओ। और आप देखिए कि जब इन्होंने ऐसे शख्स को मजनू कहा, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं फतरबसु बिही हत्ता हीन, सो इंतज़ार करो इसके इंजाम का कुछ अरसे तक। ये किसका जुमला है? कहते हैं कि योनी लीडर्स का जुमला है, सरदारों का, कि ये मजनू हो गया, ऐसे ही जोश चढ़ा हुआ है, थोड़े दिन देखो सारा नशा उतर जाएगा। ये जो इनको आज जोश चढ़ गया ना, हम ये करें हम वो करें, तो असल में ये चंद दिन की खेल है, उसके बाद आप देखना ये सारा दूर हो जाएगा और इनको बिल्कुल लग पता जाएगा। आज भी जब लोग कुरान की तरफ आते हैं ना, तो कुछ लोग कहते हैं देखना थोड़े दिन का भूत सवार हुआ वह उतर जाएगा, देखना ये ठीक हो जाएंगे। आ गई है ना ब्लाइंड पे, छोड़ दिया ना तुमने इस चीज़ को, पहले छुड़वाते हैं और जब हम छोड़ देते हैं तो ताने देते हैं, अच्छा हो गया दिमाग ठीक, गुबार उतर गया। फतरबसु बिही हत्ता हीन, बस थोड़ा सा इंतज़ार करो फिर देखना कि ये सब ठीक होगा। अब इतनी बातों के बाद, 950 साल के बाद, हुज्जत तमाम होने के बाद नूह बोले, काल रब इंसुरनी बिमा कज़्ज़बूनी, आपने अर्ज़ किया रब अब तो तू ही मेरी मदद फरमा, क्योंकि इन्होंने मुझे छुटला दिया, ये मुझे छुटला रहे हैं, अब तू मेरी मदद कर, तेरा दीन जो सच्चा दीन पेश करता हूँ उसको छुटला रहे। और ये नबियों की तरफ से असल में एक हुज्जत का तमाम होना होता है, हर नबी ने अपनी दावत के आखिर में ऐसे ही जुमले बोले कि अल्लाह बिन तिलों में तेल नहीं, अब तो लगता है कि तेरा दीन पीछे हटता जाएगा और इनकी ये बातें आगे आती जाएंगी, तो लिहाजा अब तू मेरी मदद फरमा। अब नबी दुआ करे तो अल्लाह ताला की ज़ात फिर क्यों ना दुआ करे, उस दुआ को कबूल करे। कहा फ़ौहैना इलैहि अनिस्नाइल फुल्क बिअयुनिना वहीना फ़इज़ा जाअ अम्रुना वफ़ारत तन्नूर, तो हमने वही भेजी उनकी तरफ के बनाइए एक कश्ती हमारी निगाहों के सामने और हमारे हुक्म के मुताबिक, फिर जब आ जाए हमारा अजाब और पानी उबल पड़े तन्नूर से, तो फस लुक फी हमिन कुल्ली जो जिस नईन, तो दाखिल कर लो इसमें हर जोड़े में से दो दो, व अहलक इल्ला मन सबक अलैहिल कौलु मिनहुम, और अपने घर वालों को बजुस उनके जिनके बारे में पहले से फैसला हो चुका इनमें से, वला तुखातिबनी फिल्लज़ीन ज़लमू, और न गुफ्तगु करना मेरे साथ उनके मुतल्लिक जिन्होंने जुल्म किया, क्योंकि इन्नहुम मुग़रक़ून, बेशक वो तो ज़रूर गर्क किए जाएंगे। नबी की दुआ का ये जवाब था कि फ़िक्र ना करें, कश्ती बनाएं, हमारी आंखों के सामने से मुराद क्या है, हमारी रहनुमाई में, हमारी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक। अल्लाह नबियों के ज़रिए से दुनिया का इल्म भी देता है, जैसे पीछे पढ़ा कि दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़रें बनाने सिखाया गया, तो यहाँ कश्ती बनाने का फ़न हज़रत नूह को सिखाया। क्या पता चला कि इस्लाम दुनियावी तालीम का दुश्मन नहीं है, खुदा वो तालीम इस्लाम नहीं पसंद करता कि जिसको पाने के बाद बंदा अपने आप को अल्लाह के मुकाबले में खड़ा करे, वरना साइंस का इल्म अल्लाह ताला ने दिया, फिर वही के ज़रिए हुआ। अब ये कश्ती बनी, पीछे हम बहुत दफ़ा पढ़ चुके, इसका मामला ज़्यादा तफसील से सूरह हूद में आया था कि कश्ती बनाओ, और साथ ही बता दिया कि जब हमारा अजाब का हुक्म आए तो फिर जोश पड़ेगा तन्नूर में। ये जो लफ्ज़ है ना वफ़ारत तन्नूर, तो वाह असल में और है, ये वफ़ारा ना करिएगा, वैसे वफ़रा से भी बन जाता है, लेकिन फ़ारत तन्नूर अरबी ज़ुबान का मुहावरा है, तन्नूर उबल पड़ा, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना जंग गर्म हो गई, तो गर्म तो नहीं होती ना, असल में जोश आने का मानी है कि जब भी किसी जगह से बहुत पानी खुला निकले तो उसको कहते हैं वफ़ारत तन्नूर। बस कहते हैं कि ये रोटियां पकाने का वाकई एक तन्नूर था, और निशानी मुकरर की गई थी हज़रत नूह के लिए कि जब इसमें से पानी निकले तो फ़ौरन चले जाइएगा आप, क्योंकि अब इसके बाद सैलाब आने वाला है। बस कहते हैं सारी ज़मीन के जो सुराख थे उनमें से पानी निकल गया, और बस कहते हैं कि मुहावरा है, बहरहाल इस पर बात पीछे हो चुकी कि आप जब तन्नूर से पानी निकलता देखें तो बस अब चल पड़ें। और हर चीज़ के दो दो जोड़े रख लें, फसलुक सलक से, क्यों? ताकि आगे नस्ल चलेगी। एक डिबोई हुई कौम के अंदर से अल्लाह ताला अब एक और कौम को निकालना चाहता था, इसलिए कहा कि सब ना मरें, थोड़े से ही हैं बच जाएं। और देखिए, अपने घर वालों को बिठाएं मगर उसको नहीं जिसके बारे में फैसला हुआ। ये कौन थे? आपकी बीवी और आपका बेटा कनान। और याद रखिए, फला तुखातिबनी फिल्लज़ीना ज़लमू, और ज़ालमों के बारे में मुझसे कलाम ना कीजिएगा कि इनको छोड़ दें, इन पर रहम कर दें। यहाँ एक बड़ा ही खूबसूरत असूल समझ में आ रहा है, गौर से सुनने की बात है और सुनाने की। और वो क्या? हज़रत नूह ने कितने साल दीन की खिदमत की? तकरीबन 950 साल। आज तो हमारी 10 नस्लें, क्या आज 20 नस्लें चली जाएं? 50 साल की उम्र है कोई एवरेज आज के दौर में, और 20 जनरेशन्स होंगी ना, फिर इतने साल पूरे होंगे। इतने साल अल्लाह के दीन की खिदमत की और अपनी मर्ज़ी इतनी भी ना कर सके कि जिसको चाहे अपनी मर्ज़ी से बिठा लें। कि अल्लाह, क्या बात है, अब मैं नहीं बोला तेरे दीन की खिदमत कर रहा, तो क्या फ़र्क पड़ता है? ये चचा का बेटा, इसको भी बिठा लूँ, ये माँ की बहन है, ये फुप्पो है फलां, और ये दोस्त है, और ये तो मेरे अपने हैं, इनके साथ मैं जो इस्तिस्नाई सलूक कर लूँ, एग्जेम्प्ट कर दूँ दूसरी चीज़ों से, क्या हर्ज है? की मर्ज़ी उन्होंने। आज हम कैसे इतनी सी काम, इतनी सी खिदमत के बाद अपनी मर्जियां करने लगते हैं? हम तो ये सोचते हैं कि हमने अब दीन का काम शुरू कर दिया ना, देखना जन्नत की एक डुप्लीकेट चाबी हमारे हाथ में आ गई है, जिसको चाहेंगे खोल के अंदर घुसा देंगे। देखना, कोई रोक के तो देखे, आखिर अल्लाह ताला तेरे दीन का काम करते हैं। रोज़ आते हैं, 4-5 घंटे यहाँ बैठते हैं, पढ़ते हैं, हमारा किराया लगता है, पढ़ाते हैं, इतना काम करते हैं, कितनी जिम्मेदारियां हमारे कंधों पे, और हमारी दुनिया इतनी मुतासिर हो रही है, खर्च पानी भी चलता है। अल्लाह ताला, अब तो तुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, हमारी मर्ज़ी है। यानी हम अपनी अथॉरिटीज़ का मिसयूज़ करते हैं, और हम चाहते हैं कि हम दीन का काम करें, खिदमत करें, किसी भी एंगल में मर्ज़ी हमारी चले। अब सारा इख्तियार हमें दे दो, हमारी हर दुआ कबूल होनी चाहिए। नहीं होगी जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा। ये तो वो एक खिदमत है जो ले ले हमसे, कबूल कर ले, वरना उसको हमारी ज़रूरत नहीं है। तो याद रखिए कि जब नूह का जोर नहीं चला ना अल्लाह पे, तो मेरा और आपका तो कहाँ चलेगा? हमारी तो उम्रें भी छोटी, हमारी तो कोशिशें भी थोड़ी। कोई मर्ज़ी का मालिक नहीं बन सकता अल्लाह के दीन का काम करके। जहाँ अल्लाह का हुक्म आ गया, उसी को मानना पड़ेगा। और आप ज़रा हज़रत नूह की जगह अपने आप को ला के तो सोचिए, हम तो इसको हमेशा नूह की सूरत में पढ़ते हैं ना। हाँ, नूह बच गए, 70-80 बच गए, लेकिन ज़रा सोचिए तो सही, उस वक्त दिल पे क्या गुजरी होगी नूह के, जब अपने साथी डूबने लगे। फ़इज़स्तवैता अन्त वमम्मअका अलल फुल्की, फिर अच्छी तरह बैठ जाएं जब आप और आपके साथी कश्ती पर। फ़कुल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज्जाना मिनल क़ौमिल ज़ालिमीन, तो कहना कि सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें निजात दी जालिम कौम से, उनके जुल्म से। बहुत ही प्यारी बात है। अल्लाह खुद ही सिखा रहे हैं कि जब बैठ जाएं, इस तवईता सवा से, दोनों किनारों से बराबर होने को कहते हैं इस्तवा। उर्दू में भी हम लफ्ज़ बोलते हैं मुसावी, मसावात, हमवार हो जाओ, यानी सवार होने के बाद जम कर बैठ जाओ। तसल्ली दी जा रही है कि इस हिसाब से तुम बच जाओगे। और ऐसे वक्त में करना क्या है कि तुमने ज़ुबान पर जो कलमा रखना है वो क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पता चला? देखिए, नबी नबी हो, नेक शख्स नेक हो, दीनदार दीनदार हो, लेकिन दिल सबके अंदर होता है। इमेजिन करें कि हज़रत नूह के दिल पर क्या गुजरी होगी जब उनके मिलने वाले डूब रहे हैं। अपने चंद मिलने वालों का तसव्वुर लीजिए, रिश्तेदारों का तसव्वुर लीजिए। ज़ाहिर है कि जिस जगह बंदा रहता है, उन गलियों से रोज़ गुजरे तो इंसानों की भी पहचान हो जाती है, गलियों की भी पहचान होता है, जानवर तक इंसान को याद रहते हैं जिनको बार बार आप देखें। ये कोई छोटी चोट थी? मान लिया, आप एक लम्हे के लिए इस वक्त सोचिए, दीन की वजह से सब डूब रहे हैं ना, लेकिन दुनियावी ताल्लुक तो थे ना, मोहब्बतें भी थी, ख्वाहिशात भी थे, लेन देन भी होगा, शादियाँ मंगनियाँ ब्याह सब कुछ होगा, लेकिन जब सबको डूबता देखा होगा और कुछ नहीं कर सकते, क्या दिल पे गुजरा होगा? चोट तो पड़ती है, तो चोट पे ये नहीं कहा कि अब शिकवे करो, अल्लाह क्या किया, लो मेरे तुफैल तूने उसको भी ना बख्शा, अल्लाह तुझे मेरी लाज नहीं आई, मेरे फलां को बख्शता, बल्कि कहा बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। असल में अल्लाह से मोहब्बत करने वालों का तरीका हिजरत बताया जा रहा है कि जब वो अल्लाह के लिए हिजरतें करते हैं ना, तो उन चीज़ों को छोड़ते हुए रोते धोते नहीं हैं। उनकी ज़िंदगी में ये बात पॉसिबल ही नहीं कि वो ऐसे लोगों से मोहब्बत करें जो अल्लाह से मोहब्बत ना करें, अल्लाह की अतात ना करें। तकलीफ़ बड़ी होती है बेदीनी की वजह से लोगों को छोड़ना। हाय कितनी अच्छी महफिलें थीं, कितने प्यारे थे, कितना मिल के हम इंजॉय किया करते थे, लेकिन क्या कह रहे हैं कि अल्लाह तेरी तारीफ है, नजाना मिनल कौमि ज़ालिमीन, इन जालिमों से तेरे नाफरमानों से तूने निजात दी, शुक्र है बेटा। होगा फिर मैं क्या करूं, मैं तो खुश हूं क्योंकि एक सच्चा मुवाहिद, एक सच्चा अल्लाह से प्यार करने वाला कभी भी बेदीनों और मुशरिकों और दीन के नाम पे नित नए काम करने वालों के बीच में खुश नहीं रहता। ये तो हम है ना, कहते हैं जो कर रहे करने दो, डोंट टॉक अबाउट रिलीजन, माइंड योर बिजनेस, अपना काम करो, दावतें भी करो, खाओ भी पियो भी, काम करो, नाराज ना करो किसी को। हालांकि सच्चा मोमिन मोहब्बत करता है तो अल्लाह के लिए, अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग्ज़ु फिल्लाह, क्योंकि उनको यकीन होता है ना कि आखरत में फिर बेहतरीन साथी मिलेंगे। हम सब अपनी मोहब्बतों और नफ़रतों के किबलों को सीधा कर लें, सारा कुछ सीख सिखा के पढ़ पढ़ा के अगर हमारे रिश्ते करने का यही क्राइटेरियन है कि क्या करें, अब जो भी है करनी खानदान में शादी है, नहीं पढ़ा हुआ लड़का, नहीं आता दीन उसको, उसका अकीदा ख़राब है, घर वाले ऐसे हैं, वैसे करनी उधर है क्योंकि ख़ानदान है। ये जहालत की बातें होती हैं, खुद भी तड़पते हैं, जिनको बुलाते हैं उनके साथ भी दिल नहीं मिलते, और इस तरह की कहानियाँ होती हैं। अल्लाह की ज़ात जहाँ बताती है कि बंदे मोमिन की हर मोहब्बत अल्लाह के रास्ते से गुजर के जाती है। वकुर रब्बी अंजिलनी मुनज़लम मुबारकन, और ये भी अर्ज करना कि मेरे रब उतार मुझे बाबरकत मंजिल पर, वन तखैरुल मुनजिलीन, और तू ही सबसे बेहतर उतारने वाला है। फिर फर्क देखिएगा, मुनजिल और मुनजल, तू उतारने वाला है और वो जो उतारा गया। ये भी दुआ सिखा दी गई कश्ती में से उतरने की। पहला हुक्म था कश्ती में बैठो, बैठ गए, अब हुक्म है कश्ती से उतर जाओ, उतर गए। ये है ईमान वाला, अल्लाह के बैठ जाओ, बैठ गया, उठ जाओ, उठ गए, हैंड्स अप हैंड्स अप। जो कहता है समय ना व अता ना की कैफियत, बंदा है मोमिन मानता ही जाता है, मानता ही जाता है कि अब मैं नहीं अड़ी करूँगा। हम कहते नहीं अल्लाह अभी और बैठना है, बैठ जाओ, अभी नहीं वक्त हुआ, सारे बैठ जाएं फिर बैठेंगे। पता नहीं हमारे अंदर इताअत का जज्बा कब उभरेगा, शायद इस ज़िंदगी में या इसके बाद। हम कहते हैं हर हुक्म दूसरे के लिए, हर कॉल दूसरे के लिए, हर कानून दूसरे के लिए, हर रूल दूसरे के लिए। याद रखिए, जब तक कवानीन को अपने दिल की ज़मीन पे नहीं उगाएंगे, आपकी भी कोई नहीं मानेगा। सिखाया जा रहा है कि बैठो भी तुम्हारे कहने पे, उठो भी तुम्हारे कहने पे। अब आप इमेजिन करें, जिस मुसलमान को ओड़ी करने की आदत हो जाती है ना, वो बैठता कश्ती में, कहता नहीं अभी इंजॉय कर रहा हूँ, अभी नहीं, ज़रा सारे बैठ लें, जब कश्ती चलेगी फिर बुलाना। डूब गया था कनान, कहने लगा कि बाप मैं पहाड़ पे चला जाऊँगा, या सिमुनी मिनल मा सावी लल जबल, पहाड़ पे चढ़ जाऊँगा। अपनी मर्जियाँ करने वाले बचते नहीं हैं, और टूटी हुई कश्तियों में सवार इतात के बदले में इंशाल्लाह पार लगते हैं। इसी तरह कल पुल सरात से वही लोग पार उतरेंगे जो अतीउल्लाह व अतीउर रसूल करते थे, और अपनी मर्जियां अपनी मनमानियां करने वाले नहीं आते। कइन नफी ज़ालिका लआयातिल, बेशक इसमें निशानी है, व इन कुन्ना लमुबतलीन, और बेशक हम तो ज़रूर अपने बंदों को आजमाने वाले हैं। फिर देखिए मुबतल और मुबतिल का लफ्ज़, हम इब्तला में डालने वाले हैं, हम आजमाइश करने वाले हैं। हमारी तो आदत है, हम तो लोगों को चेक करते रहते हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद, कर क्या रहे हैं, इनकी पसंद क्या है, नापसंद क्या है। हम इनको آزما کے دیکھتے ہیں کہ یہ کرتے کیا ہیں، اب ان کے دل کے قبلے بدلے کہ نہیں بدلے، ابھی بھی یہ پچھلی محبتوں میں جی رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں، کیا پتہ چلا کہ ہم میں سے ہر انسان اللہ کی نگاہوں میں. کہا کہ ہم ان سب کو وہاں سے آزما کر پھر جنت میں لے کے جائیں گے. اور اس طرح قوم نوح ڈوب گئی. اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو جو دعا سکھائی تھی کہ وَقُرْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، تو اس میں آپ نے تکرار دیکھی ہے نون زا لام کی. نزل پہ پیچھے بات ہو چکی ہے، وہ کھانا جو مہمان کو آتے ہی کھلایا جائے، پہلا کھانا جو ہوتا ہے. لیکن نزیل کہتے ہیں نئے آئے ہوئے مہمان کو، جب تھوڑی دیر ٹھہر جاتا ہے تو ضعیف بن جاتا ہے، جس سے ضعیف الرحمن کا لفظ ہے.